नंबर 4 पुनर्जागरण उत्तर की ओर। उत्तरी यूरोप में मध्यकाल के समाप्त होने की गति अपेक्षाकृत धीमी रही। जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है, यहाँ के सामाजिक आर्थिक हालात इटली के हालातों से कई रूपों में भिन्न थे। दक्षिण के संदर्भ में जो स्थिति पूंजीवादी उद्यम गणतंत्रवाद तथा शहरी समाज की थी, वही उत्तर के संदर्भ में सामंतवाद दरबारी परंपरा और ग्रामीण क्षेत्र की थी। कला में अथवा साहित्य में प्रकट होने वाले मानवतावाद के उदय की एक शर्त यह है कि एक तो ऐसा व्यापक संपत्तिशाली वर्ग अस्तित्व में हो जो इस कला और साहित्य को संरक्षण प्रदान करे, दूसरे प्रबुद्ध साहित्यिक जनसाधारण भी हो। इटली में इस वर्ग में वह चाहे राजदरबारी क्षेत्रों से आया हो अथवा नए पूंजीवादी तबके में से, कलात्मक और साहित्यिक विकास के प्रति एक तरह की ताजगी और वैयक्तिकता की भावनाएं थीं। उत्तर में मानवतावादी प्रभाव वीरता और अंधविश्वास के विचारों के साथ घुले मिले हुए थे। वास्तव में अगर 15वीं शताब्दी के इंग्लैंड की बात की जाए तो वहाँ मानवतावाद नहीं था, और फ्रांस तथा जर्मनी में तो उसके अस्तित्व का सवाल ही पैदा नहीं होता। शताब्दी के अंत तक उत्तर में जो चीज थी वह मात्र लतानीकरण और शास्त्रवाद के प्रति एक आकर्षण ही था। वह इस पुरातन के नैतिक अथवा सौंदर्यपरक मूल्यों की कोई समझदारी नहीं थी। इस समय उत्तर के राज दरबारों में पराक्रम की भावनाओं का ही ज्यादा बोलबाला था। इंग्लैंड में ऊनी उद्योग की थोड़ी सी प्रगति हुई थी तथा वहाँ वास्तव में व्यापारियों और उद्योगपतियों का एक महत्वपूर्ण तबका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वर्ग अभिजात वर्ग से अपने सामाजिक अंतर के बारे में बड़े लंबे अरसे तक सचेत नहीं हुआ था, और न ही वे इस अंतर विरोध को तीव्र करना चाहते थे। इसके विपरीत अभिजात वर्गीय परिवारों में उनके शादी ब्याह की कई मिसालें हैं। दी ऑर्डर ऑफ सिवेलरी एंड नाइटहुड शीर्षक एक फ्रांसीसी प्रकाशन का अनुवाद करते हुए मूलतः लंदन के व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि कैक्सटन ने टिप्पणी की थी कि यह एक समयोचित प्रकाशन है जो अंग्रेजों को उनके गौरवशाली अतीत की याद दिलाएगा, जब अंग्रेज नाइट सीमंत ऐसी असाधारण वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया करते थे। उस समय की एक अत्यंत फैशनेबल और बड़े पैमाने पर पढ़ी जाने वाली पत्रिका दी लंदन क्रॉनिकल लगातार सामंती टूर्नामेंटों और शाही जुलूसों के बारे में व्यापक सामग्री प्रकाशित करती रहती थी। फ्रांस में शहरों के निवासियों का प्रमुख तबका व्यापारियों या उद्योगपतियों के वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हालांकि व्यापारिक और औद्योगिक क्रियाकलापों के कुछ रूपों का वहां पता चलता है और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है, लेकिन स्थानीय अभिजात वर्गीय लोगों में, जिनकी प्रांतीय हितों तथा जमीन में पैसा लगाने के प्रति गहरी दिलचस्पी थी, पराक्रम में विश्वास रखने वाली दरबारी संस्कृति का बोलबाला था। यह बात इस तथ्य से भी प्रकट होती है कि जब पाओलो एमिलियो फ्रांसीसी दरबार से संबंध एक इतालवी मानवतावादी ने फ्रांस का आरंभिक इतिहास लिखते समय फ्रांस के सामंतों की मूल वंशावली ट्राय से संबंधित होने की गाथा को कपोलकल्पित मानकर ठुकरा दिया, तो परिणाम यह निकला कि उसका पांडित्य फ्रांसवासियों को जरा भी प्रभावित नहीं कर सका। हालांकि इटली का उदाहरण सभी के सामने था, फिर भी यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वहां से आने वाले विचारों को अन्यत्र भी ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। एक लंबे समय तक अधिकतर उत्तरी राज्यों तथा इटली के बीच संपर्क कुछ अधिक लाभकर सिद्ध नहीं हुए। 1490 से आरंभ होने वाले दशक से पहले इटली के यात्रियों में मुख्य रूप से पादरी, राज्याधिकारी और पर्यटक व्यापारी ही हुआ करते थे। इंग्लैंड या जर्मनी के भद्रजन एवं व्यापारी अभिजात वर्ग अपने बच्चों को इटली के विश्वविद्यालयों में भेजने को फैशन नहीं समझते थे, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन का फल शीघ्र प्राप्त नहीं होता था। बहरहाल इस बारे में व्यावहारिक कठिनाइयां और भी ज़्यादा थीं। जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, आल्पस पर्वत के उत्तर में सामाजिक स्थिति की भिन्नता के कारण वहां पुनर्जागरण को दूसरे ढंग से लिया गया। यहां पर सबसे अधिक प्रभावशाली लोग जमींदार थे जिनको काफ़ी राजस्व मिलता था। समाज में चर्च इनसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी था, इसलिए यह दिलचस्प बात है कि जीवन की व्यावहारिक समस्याओं के बावजूद दक्षिण के नव पैगनवाद को फौरन अस्वीकृत कर दिया गया। इटली के बाहर मानवतावाद मुख्य रूप से ईसाई पुट लिए हुए था और पुनर्जागरण के घेरे में मध्यकालीन संस्कृति की कई परंपराएं भी इसके साथ चल रही थी। इसका कारण अस्पष्टतः यह था कि इटली में मानवतावाद जहां मध्यकालीन विचारों के माध्यम से धीरे धीरे उभरा था, वहां उत्तर पश्चिम यूरोप के देशों में इसे अचानक भिन्न परंपराओं के आधार पर खड़े भिन्न सामाजिक ढांचों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार उत्तर दक्षिण में उपयोगी आदान प्रदान तभी विकसित हुआ जब उत्तर के नागरिक और विद्वानों ने स्वयं को पांडित्यवाद और सैनिक संस्कृति से मुक्त करके ऐसी शिक्षा की खोज प्रारंभ की जो मानवतावाद और ईसाइयत दोनों की विशेषताएँ लिए हुए थी। इसलिए फ्लोरेंस के नव प्लेटोवाद का अनूठा महत्व है क्योंकि पुरातन युग की प्रति क्लासिकी एवं धार्मिक दृष्टियों के बीच चुनाव में जो द्वंद्व है उसे यह सुलझा सकता था। उत्तरी पुनर्जागरण आंदोलन के सबसे आरंभिक लक्षण जर्मनी में देखने को मिलते हैं। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रति इसके जर्मनी के विरोध और रोम के साथ इसके ब्रिटेन एवं फ्रांस के अपेक्षा कमजोर ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए यह बात कुछ विचित्र सी भी लगती है। एक हद तक इसका कारण यह हो सकता है कि जर्मन भाषा की जटिलताओं की वजह से इसके द्वारा नए ज्ञान के प्रचार प्रसार में अधिक मुश्किलें पेश आईं, अतः मानवतावादी लैटिन का स्वागत किया गया। इसके अलावा जर्मनी में सिविल विधि तथा पुरातन के प्रति प्यार बढ़ता जा रहा था और ये ऐसे गुण थे जिनकी वजह से इतालवी मानवतावादियों के प्रति आकृष्ट हुए। जर्मनी में पुनर्जागरण।